सुनो भाइयों बहनों एवं बालक बालिकाओं, आज 30 जुलाई 2020 का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो और आप सबकी बुद्धि निश्चयात्मक हो। निश्चयात्मक क्या होती है कि एक डिसीजन लेना है सोच समझ के और उस डिसीजन को अंत तक निभाना है। तो इसी के बीच में गीता अध्याय 2 का श्लोक है 41, जब सायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदना बहुशाखा अनंताश्चे बुद्धो अव्यब साई नाम। हे कुरु नंदन, इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुशाखाओं वाली ही होती हैं। समता की प्राप्ति उसी को होती है जिसका उद्देश्य एक होता है। अनेक उद्देश्य कामना के कारण होते हैं, ये तो आप समझिए कि बहुत सी कामनाएं रखो तो फिर हमारी बुद्धियां भी अनेक हो जाएंगी। श्लोक 42-43, यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रबदंत्या विपश्चिता वेद बाध्यता पार्थ नान्यदस्तीति बाधिना तमात्माना स्वर्ग पदा जन्म कर्म फल प्रदा क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गति प्रति। नंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं स्वर्ग को भी श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में किए हुए काम कर्मों प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय उन्हें और कुछ नहीं भाता है, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। गीता जय 2 श्लोक 44, भोगेश प्रसक्ता नाम चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो नाना विद्यते। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है। भोग और ऐश्वर्य संग्रह की आसक्ति कल्याण में मुख्य बाधक है। आसक्ति जो है उससे हमें भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। संसारिक भोगों को भोगने तथा रुपयों आदि का संग्रह करने वाला मनुष्य अपने कल्याण का निश्चय भी नहीं कर सकता, फिर कल्याण करना तो दूर रहा। इसलिए भगवान निष्काम भाव योग का अन्य व्यतिरिक से वर्णन करते हैं। श्लोक 45, दुनिया विषय वेद विश्व गुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्यासतो योग क्षेम आत्मवान। वेद तीनों गुणों के कार्यों का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्व से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की जाना भी मत रख और परमात्म प्राण हो जा। भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि वेदों के जिस अंश में काम भाव का वर्णन है उसका त्याग करके निष्काम भाव को ग्रहण कर। देखिए यहाँ कितना जुड़ता है स्वामी जी का प्रसंग कि वेद कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि वेद कहते हैं कि इस काम भाव में मत आओ, और श्री महाराज जी ने श्री महावीर तीर्थ में निष्काम सेवा ही पूजा है। निष्काम भाव से क्या होता है, मनुष्य तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। तीन गुण कौन से हैं? सतो रजो और तम। जब मनुष्य इन तीन गुणों से आगे निकल जाता है, अतीत हो जाता है, तो जन्म मन से भी रहित होता है, हो जाता है। हम तब तक ही संसार में बंधन में हैं जब तक हम इन गुणों में फंसे रहते हैं। तमो गुणी तो नरक को प्राप्त होता है, रजो गुणी भी कोई विशेष महत्व उसे नहीं मिलता है, वो भी कभी नरक में तो कभी पृथ्वी पर आता है, और सतोगुणी ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोक तक जा सकता है। लेकिन जो तीनों गुणों को त्याग करके काम में रहित होकर के भगवान का काम करते हैं, भगवान का नाम लिखते हैं, वही मनुष्य भगवान को प्राप्त करते हैं। श्लोक अगला है 46, यावा ने खुदा पानी सरिता सुमत लोटके तवान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मणस्य अभिजानता सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय को प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में इतना ही प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। कितनी बड़ी बात है ये समझने वाली है कि देखो सदग्रंथ ही हमारे लिए तब तक उपयोगी है जब तक हम ब्रह्म ज्ञानी नहीं होते, हम भगवान को नहीं मिल सकते, उसके बाद उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इसी विषय में मुझे एक प्रसंग एक है कि याद आ गया, श्री राम कृष्ण परमहंस जी का, बहुत से भक्त लोग बैठे हैं, दक्षिणेश्वर का काली मंदिर है, श्री राम कृष्ण परमहंस बैठे है और भक्त लोग सत्संग सुन रहे हैं। तो परमहंस जी भी इसी विषय में मुझे एक जो हावी तो वो मुझे चित्र भी दिखाई दे रहा है कि परमहंस जी बैठे हैं, भक्त लोग भी बैठे हैं और परमहंस जी ने कहा कि देखो ग्रंथों की आवश्यकता कब तक है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया इसके लिए कि किसी ने एक पत्र लिखा, उसमें लिखा 5 किलो चीनी, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल, ऐसे 2-4 चीजें लिख दी और वो पत्र भेज दिया किसी के पास, जाओ दुकान से सामान ले आओ, पैसे दे दिए, वो सामान ले आया। तो जब सामान ले आया तो जिन्होंने पैसे दिए थे या जो घर वाले थे उन्होंने पत्र से वो मिलाया कि ठीक है पूरा सामान आ गया, उन्होंने उस चिट को या पत्र को फाड़ दिया, इसका कोई आवश्यकता नहीं। ठीक ऐसे ही जब हमारे हृदय में भगवान का आवास हो जाता है तो हमें ग्रंथों की भी आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन ये तो ब्रह्म स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है। अगला श्लोक है 47, परम में आबादी कारस्ते माँ फलेश कदाचना माँ कर्म फल हेतु तेर संगो अस्त्यमु, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं, अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म ना करने भी में भी आसक्ति न हो। भगवान यहाँ अर्जुन को दोनों बात बता देते हैं कि कर्म तो करो तो ये मत सोचो कि तुम्हें क्या मिलेगा और ऐसे भी मत बनो कि कुछ लेना देना तो है ही नहीं, हमें फल तो हमें चाहिए नहीं, तो हमें कर्म क्यों करने, नहीं कर्म अवश्य करने हैं और फल की इच्छा नहीं रखनी है। एक कर्म विभाग होता है और एक फल विभाग होता है, करना मनुष्य के अधीन है लेकिन जो होता है वो भाग्य के अधीन है अथवा परमात्मा के अधीन है, संग्रह से अथवा परमात्मा के विधान से मनुष्य को जो कुछ मिला है उसे अपने भोग में न लगाकर दूसरों की सेवा में लगाना मनुष्य का कर्तव्य है। श्लोक 48, योगस्था को कर्मा समृत्यक्ता धनंजय सिद्ध्या सिद्ध समो भूतवा समत्तम योग उच्यते, हे धनंजय तू शक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। एक वस्तु या व्यक्ति में राग होगा तो दूसरी वस्तु या व्यक्ति में द्वेष होना स्वाभाविक है, राग द्वेष के रहते हुए कर्म की सिद्धि असिद्धि में समता का आना असंभव है। राग द्वेष के ना रहने पर जो समता आती है उस समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए, इसलिए समता को ही योग कहा जाता है। कर्म तो कर्म निरपेक्ष होते हैं तो योग कर्म निरपेक्ष होता है, योग निरपेक्ष होता है और जो कर्म है करना है कर्म वो सापेक्ष होती है। इस समता रूपी योग में स्थित साधक कभी योग भ्रष्ट नहीं होता है। तो ये तो आपको समझ आ गया ना कि व्यक्ति को राग द्वेष में नहीं फंसना चाहिए कि ये मेरा अपना है ये पराया है उसे द्वेष करो उसे राग करो, राग प्रेम नहीं होता है, राग होता है मोह। और जो मनुष्य राग द्वेष से युक्त होकर कर्म को करता है वो कभी योग भ्रष्ट नहीं होता, मतलब अपनी साधना से विचलित नहीं होता है। श्लोक 59, दुरीन हवम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धौ शरण मन विच्छति प्रण फल हेतवा बुद्धियों संत की अपेक्षा सक्रम कर दूर से अत्यंत ही उत्कृष्ट है। अतः धनंजय हेतु बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। वो लोग तो बिल्कुल दीन है, पुअर पीपल जिसको हम कहते हैं, दया करने के योग्य हैं, जो फल की इच्छा रखते हैं। श्लोक 50 बुद्ध युक्त जहाती युगे सुकृते दुष्कृते तस्माद् होगा युजस्य योगा कर्मसु कौशलम। बुद्धि से युक्त मनुष्य, यहाँ बुद्धि का अर्थ क्या लिया गया है? समता, कि सबके प्रति एक ही भाग, पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। कैसा योग? सम योग, समता योग, उसमें लगना चाहिए मनुष्यों को, यही कर्मों की कुशलता है। समता में आकर मनुष्य पाप और पुण्य से अलग हो जाता है। श्लोक 51 बुद्धि युक्त ही फलम त्यक्ता मनीषण जन्म बंध दिन मुक्ता पदम गयम। कारण की समता युक्त बुद्धिमान सारे कर्म जन्य फल का था संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है कि हमें उस पद को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, सम हो जाना, सुख दुख हानि लाभ जया प्रजय जो भी हमारे सामने आता है उसमें हमें एक जैसे रहना। इसके लिए हम आपको एक दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का। जब राम जी को वनवास हुआ और उससे पहले जब उनको राज्य अभिषेक की घोषणा की गई थी, अगर जब राज्य अभिषेक की घोषणा की गई तो श्री राम जी के मुख पर जो आभा थी वो आभा उनके मुख पर तब देखी गई जबकि उनको वनवास दिया गया। ये है समता, ये समता योग है। और राजा जनक भी सम थे। राजा जनक के विषय में ये कथा आती है, कथा तो बहुत लंबी है, समय मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको बताती हूँ कि राजा जनक निष्काम कर्म योगी थे। वो यहाँ हमने पढ़ा कि निष्काम कर्म करने वाले को ही समता आती है, या सब मनुष्य ही निष्काम कर्म योग करता है। तो राजा जन के विषय में भी कहते हैं कि वो एक सभा में बैठे थे अपने जनकपुरी में, बहुत से विद्वान आए हुए थे। एक सिपाही ने आके सूचना दी, महाराज शहर में आग लगी है। राजा जनक ने कहा कोई बात नहीं, लगी है तो लगने दो, मतलब वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा ये भगवान की लीला है, भगवान की इच्छा है। कहते हैं कि ये तो राजा जनक की परीक्षा ले रहे थे कोई योगी, कि देखना ये उठ के दौड़ता है या नहीं दौड़ते हैं। तो राजा जनक विचलित नहीं हुए। तो हमें भी इसका कुछ हिस्सा लेना चाहिए। यदा ते मम कलिलम बुद्धि व्यतीतयिष्यति तदा गमतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिसमे तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भलीभांति तर जाएगी, उसी समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जब मोह खत्म होता है तो हमें भोगों से वैराग्य भी हो जाता है। श्लोक 53 श्रुति विप्रति प्रणते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव अचला बुद्धिस तदा योग वाप्स्यसि। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ये गीता का आज हमने स्वाध्याय किया। अब मैं आपको अपने श्री महाराज की महादेवी तीर्थ की ओर ले जाती हूँ। आज मैं आपको श्रीमती राज दुलारी रुपला, आजकल वो यूरोप में रहती हैं, उन्होंने जो कुछ लिखा है वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। चार वाणी पत्रिका के 50वें अंक के छपने के शुभ अवसर पर श्री गीता माँ जी तथा संघ को हार्दिक बधाई। मेरे पति स्वर्गीय श्री अवतार चंद भोपाल होशियारपुर से व्यापार हेतु कुल्लू सन 1962 में आए थे। हमारा परिवार अखाड़ा बाजार कुल्लू में रहता था। कुछ वर्षों पश्चात श्री माँ देवी तीर्थ के अधिष्ठाता सेव गोदास जी ने मेरे पति का घनिष्ठ संघ जुड़ गया और हम सब वैष्णो देवी के बाबा के पास प्रति सप्ताह जाते थे। श्री महाराज जी के साथ हम हरिद्वार भी गए थे। हरिद्वार से माता वैष्णो दुर्गा की मूर्ति लाकर प्रतिष्ठा की थी। मेरे पति बिजली का काम करते थे, इसलिए महाराज जी उन्हें बिजली महादेव कहकर पुकारते थे। 1972 में हम कुल्लू से होशियारपुर चले गए, लेकिन श्री महाराज जी के प्रेम से मेरे पति वर्ष में 2-3 बार होशियारपुर से अवश्य मंदिर आते थे। श्री महाराज जी के ब्रह्मवीर होने के बाद भी हमारा मंदिर से तथा पूजनीय श्री माँ जी से स्वतंत्र प्रेम भरा ही बना है। श्री महाराज जी 1982 में हमारे घर होशियारपुर आए थे। उनके आशीर्वाद से मेरा पुत्र राकेश लंदन चला गया और उसने व्यापार शुरू किया। श्री महाराज जी के आदेशानुसार हमने अपनी पुत्री का शुभ विवाह लाला साधु राम खेरा कैशियर महादेवी तीर्थ के छोटे पुत्र विपुल कुमार खेरा से कर दिया। तत्पश्चात राकेश हम सबको भी इंग्लैंड ले गया। मेरी तीन पुत्रियों का विवाह तथा एक पुत्र का विवाह भी इंग्लैंड में ही हुआ है। चारों परिवार भी मंदिर से पूरी तरह जुड़े हैं। वो प्राय मंदिर में आते रहते हैं। इंग्लैंड में मेरे पति ने सब रिश्तेदारों से धन राशि जमा करके मंदिर में एक हाल मंगवाया। उन्होंने मंदिर में सन 1995 में माता की चौकी जागरण भी करवाया था। बिजली द्वारा पूरे मंदिर की सजावट की गई थी। ऐसा लगता था मानो पर्वत पर स्वर्ग ही उतर आया है। शिव माँ जी के साथ हमारा प्यारा भी वैसा ही है। नई इंग्लैंड में रहकर मंदिर के यादों में खो जाती हूँ। प्रति वर्ष 1-2 बार कुल्लू और जाती हूँ। माते श्री महादेवी तथा श्री श्री महाराज के चरणों में मेरा तथा मेरे परिवार का शत शत प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ राज दुलारी भोपला। आगे एक और छोटा सा संस्मरण सुनाने जा रही हूँ कंचन गुप्ता का। कंचन गुप्ता श्री माँ जी को तथा शारदा माँ सेवा संघ को पत्रिका के 50वें की बधाई देती है। इस अवसर पर मैं श्री स्वामी जी के स्नेह का एक अनुभव बताना चाहूँगी। स्वामी जी के समय जब मंदिर नया नया बन रहा था तो उसमें स्वामी जी की पुरानी कुटिया में रहते थे। मैं सर्विस से वापस घर पे आते और स्वामी जी के पास मिलने जाती। मेरे साथ 15-20 लोग और होते थे। स्वामी जी हम सबको लिए चाय बनाते और कभी कभी हमें खाना भी खिलाते। एक दिन वहाँ बैठे बैठे मेरे मन में विचार आया कि श्री महाराज जी हमें रोज खाना खिलाते हैं, स्वामी जी के पास इतना पैसा कहाँ से आता है। ये सोचते सोचते मैंने श्री महाराज जी के चरणों में 10 रुपए चढ़ा दिए और मैं घर आ गई। अगले दिन जब मैं सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तो मैंने अटैची खोला तो देखा कि सबसे ऊपर 100 रुपए का बिल्कुल नया नोट पड़ा हुआ था। मैं ये देखकर हैरान हुई और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जब मंदिर गई तो मैंने सुबह गाड़ी बात श्री महाराज जी को एकांत में बताई तो स्वामी जी ने केवल इतना कहा कि माँ भगवान आपको बहुत बरकत दे। स्वामी जी का ये आशीर्वाद फलीभूत हुआ। मेरे घर में बरकत ही बरकत है। स्वामी जी की जय हो। कंचन गुप्ता। गीता माँ जय माता दी।